जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीर वन चारी, जमुना तीर वन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीर वन चारी, जमुना तीर वन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीर वनचारी जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रज आचार्य अष्टोत्तर शत शिष्यमत इस डिवाइन कृष्ण लभ चरण अरविंद भक्ति विदान स्वामी जगत गुरु श्री प्रभुपाद की इस्कॉन बिबड़ी फाउंडर आचार्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रज आचार्य अष्टोत्तर शत शिष्यमत इस डिवाइन कृष्ण भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज श्री प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय ब्रज वृंदावन धाम की जय नवद्वीप मायापुर धाम की जय जगन्नाथपुरी धाम की जय गंगा माई की जय जमुना माई की जय भक्ति देवी की जय तुलसी महारानी की जय समावित भक्त वृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे ओ ग्लोरियस असेंबली बॉडीज ओ ग्लोरियस असेंबली बॉडीज ओ ग्लोरियस असेंबली बॉडीज ग्लोरियस श्री श्री गुरु एंड श्री गौरांग ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री चैतन्य चरितामृत में आदि लीला और प्रथम अध्याय में श्लोक संख्या 91 की है 91 है ना ओके कल आपने सारा कवर नहीं किया है तो हम अगले श्लोक से भी चालू करते हैं तो सारा कवर हो जाएगा चैतन शास्त्र श्रीमद् भागवतम अत्यंत उन्नत एवं दयालु भक्तों का वर्णन करता है और भौतिक प्रदान करने वाला है जो लोग विनित सेवा वे तुरंत ही भगवान को अपने हृदयों में बंदी बना सकते हैं अतएव श्रीमद् भागवत के अतिरिक्त अन्य किसी शास्त्र की आवश्यकता भी नहीं रह जाती दूसरे श्लोक में आया है कि महामुनि कृते शब्दों से यह सूचित होता है कि श्रीमद् भागवत का संकलन महर्षि व्यासदेव द्वारा हुआ है जो कभी कभी नारायण मुनि भी के नाम से भी भागवत का संकलन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके भक्तों की श्रीमद् भागवत में वास्तविक धर्म तथा कैतव धर्म में स्पष्ट अंतर किया गया है वेदांत सूत्र पर इस अपसंप्रदाय है जो धर्म के नाम से चलते हैं किंतु वे धर्म के वास्तविक सार तत्व की उपेक्षा करते हैं जीव का वास्तविक धर्म उसका स्वाभाविक अंतर्निहित गुण है जबकि कैतव धर्म अविद्या जीव कर सकता है श्रीमद् भागवत में अंतर्गत विचार किया जा सकता है सकाम कर्म का पथ ज्ञान तथा योग शक्तियों का पथ पूजा तथा भक्ति का पथ सकाम कर्म का पथ कर्मकांड भले ही मनुष्य की भौतिक दशा को ऊपर उठाने के निमित्त धार्मिक अनुष्ठानों से अलंकृत क्यों न हो वह प्रवंचना यानी कि ठगी है क्योंकि यह मनुष्य को कभी भी भौतिक अस्तित्व से मुक्ति दिलाने वाली है और सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त कराने में सक्षम नहीं बन सकता। जीव भौतिक अस्तित्व के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए निरंतर संघर्ष करता रहता है, किंतु सकाम कर्म का पथ कर्मकांड उसे भौतिक संसार के क्षणिक सुख दुख और की ओर ले जाता है। सकाम पुण्य कर्म से मनुष्य ऐसे पद को प्राप्त होता है जहां उसे क्षणिक भौतिक सुख का अनुभव होता है, किंतु पाप कर्म उसे भौतिक इच्छाओं तथा अभाव की कष्टमय स्थिति की ओर ले जाते हैं। यदि मनुष्य को भौतिक सुख की पूर्णतम स्थिति में भी रख दिया जाए तो भी वह जन्म मृत्यु या वृद्धावस्था तथा रोग के कष्टों से मुक्ति नहीं हो सकता। अतएव भौतिक दृष्टि से सुखी व्यक्ति को उस शाश्वत सुख की आवश्यकता रहती है जो सकाम कर्म के रूप में भौतिक धार्मिकता से भी कभी नहीं मिल सकती। ज्ञान के अनुशीलन का मार्ग ज्ञान मार्ग तथा योग शक्तियों का मार्ग योग मार्ग समान रूप से संकटपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य को यह पता नहीं चल पाता कि इस अनिश्चित मार्गों का अनुसरण करने से भी कोई यहाँ जाएगा। एक आरोहपंती दार्शनिक आध्यात्मिक विज्ञान की खोज में भले ही अनेक जन्मों जन्म तक मानसिक तर्क वितर्क से क्यों न करता रहे, किंतु जब तक वह सत्वगुण की शुद्धतम अवस्था को प्राप्त कर नहीं लेता अर्थात जब तक वह भौतिक तर्क वितर्क के धरातल पे ऊपर उठ नहीं जाता, तब तक वह यही ज्ञान नहीं पाता कि हर वस्तु भगवान वासुदेव से उद्धृत होती है। भगवान के निर्विशेष पहलू से आसक्ति होने के कारण यह वासुदेव ज्ञान की दिव्य अवस्था तक ऊपर नहीं पाता और अपने मन की अशुद्ध दशा के कारण वह मुक्ति की उच्चतम अवस्था तक पहुंचने में भी पुनः भवसागर में आ गिरता है। उसका यह अधपतन भगवान की सेवा में स्थिरता न होने के कारण होता है। यहां तक योगियों की योग शक्तियों का संबंध है, ये भी आत्म साक्षात्कार के मार्ग में भौतिक बाधाएं हैं। एक जर्मन विज्ञान विद्वान जो भारत में आकर ईश्वर भक्त हो गया था, उसने कहा था कि भौतिक विज्ञान ने भले ही प्रशंसनीय प्रगति कर ली है जिससे वह योगियों की योग शक्तियों की नकल कर सकता है, अतएव वह योगियों की योग शक्ति सीखने के लिए भारत नहीं आया है अपितु वह भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा का मार्ग सीखने आया है। इसका उल्लेख महान शास्त्र श्रीमद् भागवत में किया गया है। योग शक्तियों से योगी भौतिक दृष्टि से शक्तिशाली बन सकता है और इस प्रकार अन्य भौतिक विज्ञानों की तरह वे जन्म मृत्यु तथा जरा तथा रोग के दुखों के क्षण छुटकारा दिला सकती है, किंतु ऐसी योग शक्तियां इन कष्टों से कभी भी स्थायी रूप से छुटकारा नहीं दिला सकती। अतएव भागवत संप्रदाय के अनुसार धार्मिकता का यह मार्ग भी अनुयायियों को ठगने की विधि है। भगवत गीता में स्पष्ट बतलाया गया है कि सर्वाधिक उन्नत तथा शक्तिशाली योगी वह है जो अपने हृदय में निरंतर भगवान का चिंतन कर सके और भगवान की प्रेममयी सेवा में लगा रह सके। असंख्य प्रशासकीय देवताओं की पूजा का मार्ग कर्मकांड एवं ज्ञानकांड की उपयुक्त विधियों से भी अधिक खतरनाक तथा अनिश्चित है। दुर्गा शिव गणेश सूर्य जैसे अनेक देवताओं तथा निर्विशेष विष्णु रूप की यह पूजा विधि से भी लोग स्वीकार करते हैं जो इंद्रिय तृप्ति की उत्कृष्ट इच्छा से अंधे हो चुके होते हैं। शास्त्रों में वर्णित अनुष्ठानों के इस मांग तथा अभाव के युग में ठीक प्रकार संपन्न करना पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जब इन अनुष्ठानों की समुचित रीति से संपन्न किया जाता है तब वह मनुष्य की इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को निश्चित रूप से पूरा कर सकते हैं, किंतु ऐसी विधियों से मिलने वाली सफलता निसंदेह क्षणिक होती है। यह केवल अल्पज्ञों के लिए ही उपयुक्त है, यही भगवत गीता का निर्णय है। किसी भी विवेकशील व्यक्ति को ऐसे क्षणिक लाभों से संतुष्ट होना नहीं चाहिए। उपयुक्त वर्णित तीनों धार्मिक मार्गों में से कोई भी मार्ग भौतिक अस्तित्व के तीन प्रकार के कष्टों से अर्थात शरीर तथा मन से उत्पन्न कष्टों, अन्य जीवों द्वारा दिए गए कष्टों और देवताओं द्वारा दिए गए कष्टों से मनुष्य को छुटकारा नहीं दिला सकता। किंतु श्रीमद् भागवत में वर्णित धर्म अपने अनुयायियों को तीन प्रकार के कष्टों से स्थायी मुक्ति दिलाने में समर्थ है। भागवत सर्वोच्च धर्म अर्थात जीव की मूल स्थिति भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पुनः स्थापित करने का वर्णन करता है। यह सर्वोच्च धर्म इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं का सकाम कर्म तथा ब्रह्म से तदाकार होने का उद्देश्य ज्ञान के अनुशीलन की इच्छा से कलमश से मुक्त है। स्थूल तथा सूक्ष्म इंद्रिय तृप्ति पर आधारित किसी भी धर्म को कैतव यानी कि छद्म धर्म मानना चाहिए, क्योंकि यह अपने अनुयायियों को शाश्वत संरक्षण प्रदान करने में असमर्थ होती है। यह प्रोज्जित शब्द महत्वपूर्ण है। प्र का अर्थ है पूर्ण और उज्जित सूचक है बहिष्कार का। सकाम कर्म के रूप में धार्मिकता प्रत्यक्ष रूप से इंद्रिय तृप्ति की स्थूल विधि है, जबकि ब्रह्म से तदाकार होने के उद्देश्य से आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन की विधि इंद्रिय तृप्ति की सूक्ष्म विधि है। भागवत धर्म अर्थात जीव के सनातन कर्म रूपी दिव्य धर्म में स्थूल या सूक्ष्म इंद्रिय तृप्ति पर आधारित ऐसी समस्त दिखावटी धार्मिकता का पूर्णतया बहिष्कार किया जाता है। भागवत धर्म अर्थात श्रीमद् भागवत में वर्णित धार्मिक सिद्धांत का प्राथमिक पाठ भगवद गीता है। यह उन उच्च कोटि के सर्वोच्च कोटि के मुक्त पुरुषों को लिए हैं जो दिखावटी धार्मिकता की इंद्रिय तृप्ति को बहुत कम महत्व देते हैं। सकाम कर्मी योगी आरोहिपंथी दार्शनिक तथा मुक्तिकामी अपने भौतिक स्थिति को ऊपर उठाने के विषय में ही चिंतित रहते हैं, लेकिन भगवत भक्तों में ऐसी कोई स्वार्थी आकांक्षा नहीं रहती। वे परम भगवान की सेवा केवल उन्हें प्रसन्न करने के लिए करते हैं। श्री अर्जुन तथाकथित अहिंसक तथा धार्मिक व्यक्ति बनकर अपने इंद्रियों को तृप्त करना चाहते थे, अतएव उन्हें पहले युद्ध न करने का निश्चय किया। किंतु जब भागवत धर्म के सिद्धांतों में पूरी तरह वो स्थित हो गए जिसमें भगवान की इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पित होने को चरम लक्ष्य माना गया है, तो उन्होंने अपना निर्णय बदल लिया और वे भगवान की तुष्टि के लिए युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। तब उन्होंने कहा, नष्टो मोहम मोह स्मृतिर लब्ध्वा तत्प्रसादात् मया अच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है, आपकी कृपा से मेरी स्मृति वापस आ गई है और अब मैं दृढ़ तथा संदेह मुक्त हूँ और आपके ये तथा आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए प्रस्तुत हूँ। ये भगवद गीता का 18वां अध्याय में 73 का श्लोक। इस शुद्ध चेतना में स्थित रहना जीव की वैधानिक स्थिति है। किसी भी तथा कथित धार्मिक विधि जो इस अनन्य आध्यात्मिक स्थिति में बाधक बनती है उसे धार्मिकता की छद्म विधि मानना चाहिए। धर्म का वास्तविक स्वरूप ईश्वर की स्वयं स्फूर्त प्रेमा भक्ति है। भगवान के साथ जीव का यह सेवा संबंध शाश्वत है। भगवान को वस्तु तथा यथार्थ तत्व के रूप में तथा जीवों के वास्तविक अर्थात सापेक्ष अस्तित्व में वस्तु के असंख्य प्रतिरूपों के रूप में वर्णित किया गया है, परंतु वस्तु के साथ इन वास्तव अंशों का संबंध कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह जीव का अंतर्हित सनातन गुण है। भौतिक प्रकृति के साथ संबंध के कारण ही सारे जीव भौतिक चेतना रूपी रोग के विविध लक्षण प्रदर्शित करते हैं। इस भव रोग का निवारण करना ही मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है। जिस विधि से इस रोग का उपचार होता है वह भागवत धर्म या सनातन धर्म कहलाता है। इसी का वर्णन श्रीमद् भागवत के पुष्टों में किया गया है। अतएव जो भी व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के आधार पर श्रीमद् भागवत का स्मरण करने में के लिए उत्सुक होता है वह अपने हृदय में पूर्ण तुरंत ही भगवान की उपस्थिति का अनुभव करता है और अपने जीवन की लक्ष्य की पूर्ति करता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಜೇನ ಭೂತಲೇ ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಕದಾಮಹ್ಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾಂತಿಕಂ. ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀಗುರು ಶ್ರೀಯುತಾಪದ ಕಮಲಂ ಶ್ರೀಗುರುನ್ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ್ಚ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗರ ಜಾತಂ ಸಹಗಣಾ ರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಾಂ ತಂ ಸಜೀವಂ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನ ಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವಂ ಶ್ರೀರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಪಾದಾನ್ ಸಹಗಣಾ ಲಲಿತಾ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂಶ್ಚ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧೋ ದೀನಬಂಧೋ ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾಕಾಂತ ರಾಧಾಕಾಂತ ನಮಸ್ತುತೆ. ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗೀ ರಾಧೇ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನುಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಶ್ರೀಹರಿಪ್ರಿಯೇ ವಾಂಚಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಏವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ನಮಃ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪೃಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೇ ಶ್ರೀಮತೇ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನಿತಿ ನಾಮಿನೇ. ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತಿ ದೇವೇ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶತಾರಿಣೆ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ್ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ್ ಭಕ್ತವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಈ ಶ್ಲೋಕ ಪರ್ ಜೊ ವಿವೇಚನ ದಿಯಾ ಗಯಾ ಹೇ ವೋ ಅತಿ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಹೇ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಾವನಾ ಅಮೃತ ಸಂಘ ಮೇ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದ ನೆ ಭಾಗವತ್ ಧರ್ಮ ಕಿ ಸ್ಥಾಪನಾ ಕೀ ಹೇ. ಕೋಯಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಲೇಕರ್ ನಹೀ ಆಯೇ, ಇತನಾ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇ. ಧಾರ್ಮಿಕತಾ ಔರ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತಾ ಮೇ ಆಸಮಾನ್ ಜಮೀನ್ ಕಾ ಫರ್ಕ್ ಹೇ. ಆತ್ಮ ಕಾ ತೋ ಏಕ ಹೀ ಧರ್ಮ ಹೋತಾ ಹೇ. ಶರೀರ ಕೆ ಅನೇಕ ಧರ್ಮ ಹೋ ಸಕತೆ ಹೇ, ಮನ್ ಕೆ ಅನೇಕ ಧರ್ಮ ಹೋ ಸಕತೆ ಹೇ, ಲೇಕಿನ್ ಆತ್ಮ ಕಾ ತೋ ಏಕ ಹೀ ಧರ್ಮ ಹೋತಾ ಹೇ. ಜಬ್ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ನಿಸ್ಬತ್ ಕರ್ತಾ ಹೇ, ಕ್ಯೋಂಕಿ ಆತ್ಮ ಮೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಮಾಯೇ ಹುಯೇ ಹೇ ನಾ. ಅನೋರಣಿಯಾಮ್ ಮಹತೋ ಮಹಿಯಾಮ್, ಅಣು ಸಭಿ ಛೋಟೆ ಬನ್ಕರ್ ಅಪ್ನಿ ಆತ್ಮ ಆಣ್ವಿಕ ಹೇ ತೋ ಭಗವಾನ್ ಇಸೆ ಭಿ ಛೋಟೆ ಬನ್ಕರ್ ಉಸ್ಮೇ ಶಕ್ತಿ ಕಾ ಸಂಚಾರ ಕರ್ ಸಕತೆ ಹೇ. ಈಶ್ವರ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಹೃದ್ದೇಶೇ ಅರ್ಜುನ ತಿಷ್ಠತಿ ಭ್ರಾಮಯಂತಿ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಜಂತ್ರಾರೂಢಾನಿ ಮಾಯಾ. ಇಸ್ಮೇ ಭಿ ಕಿತನಾ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಹೇ. ಜಬ್ ತಕ್ ಜೀವ ಶರೀರ ಮೇ ಹೇ ತೋ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧಿ ಹಿ ವಿಚಾರ ಕರ್ತಾ ಹೇ ಔರ್ ಉಸ್ಕೆ ಧರ್ಮೋ ಕಾ ಹೀ ಪಾಲನ್ ಕರ್ನೆ ಮೇ ಬಹುತ್ ಧಾರ್ಮಿಕತಾ ಕಾ ದಿಖಾವಾ ಭಿ ಬಹುತ್ ಕರ್ತಾ ಹೇ. ಲೇಕಿನ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತಾ ಮೇ ತೋ ಶೂನ್ಯ ರಹತಾ ಹೇ, ಉಸ್ಕಾ ಕ್ಯಾ ವೋ ಭರ್ಪಾಯಿ ಕಬ್ ಕರ್ ಪಾಯೇಗಾ. ಇಸ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಯಹೀ ಏಕ್ ಸೂಚನಾ, ಜಿನ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮ ಕೆ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮ ಹೋತೆ ಹೇ ಔರ್ ಉಸ್ಮೇ ಭಿ ಭಕ್ತ್ಯೋನ್ಮುಖಿ ಸುಕೃತಿ ಯದಿ ಕೀ ಹೋ ತಭಿ ದೂಸರೆ ಜನ್ಮ ಉಸೆ ಭಕ್ತಿ ಮೇ ಆಗೇ ಪ್ರಗತಿ ಕರ್ನೆ ಕಾ ಮೌಕಾ ಮಿಲ್ತಾ ಹೇ, ಅನ್ಯಥಾ ನಹೀ. ತೋ ಯಾನಿ ಕಿ ಇಸ್ ಜನ್ಮ ಮೇ ಹಮ್ ಸಿರ್ಫ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ರಹತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತಾ ಕಿ ಭೂಮಿ ಕಹಾ ಪರ್ ಹಮ್ ನಹೀ ಆತೆ, ಇಸ್ಕಾ ಮತ್ಲಬ್ ಕ್ಯಾ ಹೇ, ಸಾರಾ ಜೀವನ್ ಫೋಕ್. ಹಮ್ನೆ ಜೋ ಜೋ ಧರ್ಮ ಕಾ ಪಾಲನ್ ಕಿಯಾ ಹೇ, ಚಾಹೆ ಮನುಷ್ಯ ಕೆ ಬನಾಯ ಹುಯೆ ಧರ್ಮ ಯಾ ಮನುಷ್ಯನೆ ಅಪ್ನೆ ವಿಚಾರ ಯಾನಿ ಕಿ ಮನ ಬುದ್ಧಿ ಔರ್ ಅಹಂಕಾರ ದ್ವಾರಾ ತಿನ್ ಗುಣಾತ್ಮಕ ವಿಷಯೋ ಮೇ ಹಿ ಯೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪುಸ್ತಕ ಚಿಂತನ್ ಸಿಖಾಯಾ ಹೋ ಅಯ್ಯ ಇಸ್ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ಲಿಖಾ ಹೋ ತೋ ಉಸ್ಕಾ ಫಾಯ್ದಾ ಕ್ಯಾ ಹೇ. ವೋ ಕಿಸಿ ಕಾ ಉದ್ಧಾರ ನೀ ಕರ್ತಾ. ಹಮ್ ಬಾರಂಬಾರ ಕಹತೆ ಹೇ ಕಿ ಕಿ ಯಹಾ ಜೋ ಸಪ್ತಾಹ ಕಾ ಆಯೋಜನ ಹೇ, ಬ್ರಜ ಸುಂದರ ಪ್ರಭು ಜೋ ಅಪ್ನೆ ಭಾಗವತ್ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಕೆ ಸಂಚಾಲಕ ಹೇ, ಉನ್ಹೋನೆ ಏಕ್ ಕಿತಾಬ್ ಲಿಖಿ ಅಭಿ ಪ್ರಕಾಶಿತ ನಹೀ ಹುಯಿ ಹೇ, ಲೇಕಿನ್ ಹಮೇ ದಿಯಾ ಔರ್ ಕಹನೆ ಕಿ ಮಹಾರಾಜ ಜಿ ಆಪ್ಕಾ ವ್ಯಕ್ತವ್ಯ ಥೋಡಾ ಲಿಖೆ ತೋ ಹಮೇ ಏಕ್ ಬಾತ್ ಬರಾಬರ್ ಖಟ್ಕಿ ಉಸ್ಮೇ. ವೋ ವರ್ಣನ್ ಕರ್ತೆ ಹೇ ಕಿ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ಕೆ ಅನುಸಾರ ಭಾಗವತ್ ಕೆ ಮಹತ್ಯ ಮೇ वो धुंधुकारी और गोकर्ण की बात आती है। तो धुंधुकारी प्रेतियों में पटका, दोनों भाई थे, एक मां के बेटे नहीं लेकिन एक परिवार में। धुंधुकारी बेवकूफ निकला, सारा जीवन पाप आचरण में व्यतीत किया और वैसे ही कम उम्र में ही खत्म हो गया, और प्रेत योनि में पटका। जबकि गोकर्ण बड़ा संस्कारी निकला, विद्वान निकला और भक्ति प्रधान उसका जीवन निकला। वो श्रीमद् भागवत की चर्चा हमेशा करते थे, कथा का आयोजन जिस पैमाने पर आजकल हो रहा है वैसे नहीं बताया, पर फिर भी पद्म पुराण में शंकराचार्य के अनुसार जो महात्म्य लिखा गया है तो धुंधुकारी को 7 दिन में ही मुक्ति दिलाई थी भागवत ने। भक्तों के बीच में ये जो भेद होता है वो स्पष्टीकरण के लिए हम कहते हैं। बहुत सारे पुण्यशाली लोग भी बड़े बड़े आयोजन में आते हैं, हजारों की संख्या में होते हैं और आयोजन के पीछे ही ऐसे लग जाते हैं कि भागवत का मूल अर्थ जो ग्रहण करना है वो तो उनकी समझ के बाहर ही होता है, और आने वाले की भी अपनी व्यवस्था में बने रहते हैं, कोई यजमान बनता है, पैसे की बोलबाला होती है। तो इसमें धर्मोप्रोजित कई तो वो अत्र तो कहां मालूम होगा, वो तो श्लोक बोलते ही नहीं भागवत का, यदि बोलते होंगे तो अर्थ की समझौती जिस प्रकार प्रभुपाद जी ने यहां दी है वो तो कहते ही नहीं। भागवत का महात्म्य भागवत के अनुसार ही प्रथम दो चरण, प्रथम दो स्कंद कहलाते हैं, तीसरा झांग कहलाती, चौथा कमर उसे ऊपर, इसी तरह 10वां स्कंद है भगवान का सुंदर मुखारविंद, इसी तरह वो करते हैं। लेकिन प्रथम दो स्कंद में जो जो लिखा है उसके लिए तो कोई ज्यादा चर्चा करते ही नहीं। सौनकादि मुनियों का जो ये नैमिषारण्य में एक सत्र 1000 साल के लिए जो आयोजन किया है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, लेकिन आयोजन के पीछे उन लोगों ने तो स्पष्टता की है कि कलयुग बहुत दूषण है, वो किसी का भला करने वाला नहीं है, लेकिन यही एकमात्र उपाय है जो श्रीमद् भागवत का यथोचित कथा श्रवण करें। यथोचित जिस उद्देश्य के लिए कथा भी करना है और जिस उद्देश्य के लिए श्रवण करना है, क्या भवसागर पार करना, ये सिर्फ मान्यता का ही धर्म रहेगा क्या? लोग तो वैसे धार्मिक हैं, थोड़े पुण्यशाली हैं, लेकिन पुण्य की पोटली कहां ले जाएगी? पुण्य करी अमराप पूरी पाम है, अंते 84 माहिर है, स्वर्ग से भी आभुवनान भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, ये गोल चक्कर काटना बंद नहीं होता। तो जो जिस प्रकार की मान्यता से आते हैं भागवत श्रवण करने में, जो 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 हेतु, एकमात्र हेतु है, इस हेतु के लिए ही जो ये भार नहीं देते, उसको पूर्ण ढंग से समझाते नहीं, तो भागवत कथा का आयोजन भी निष्क्रिय साबित होता है। प्रभुपाद इसीलिए कहते हैं, और उसकी स्पुष्टि अपने संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु के एक विशुद्ध भक्त वृंदावन में आकर राधा कुंड में चैतन्य चरितामृत लिखने की शुरुआत करते हैं, राधा कुंड पर। और भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति के हेतु के लिए ही सारा प्रयोजन कर, और जहां जहां विषमता बताई गई है वैसे श्लोक पकड़ पकड़ के इनकी इतनी बारीकाई से छनावट करते हैं कि दिमाग उसमें ही तर हो जाना चाहिए। कथा कोई कोई पौराणिक कथा नहीं है, ये तो भागवत तो अनंत कालों से आती है। क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में ही स्वयं बताया कि मैंने ये योग जो है भागवत धर्म का जो अर्जुन को सिखा रहे हैं वो पहले लाखों साल पहले मैंने सूर्यदेव को कहा था। एवं विवस्वते मनोभ प्रोक्त वाहनम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनोरिक्षा कवय प्रवित एवं परंपरा प्राप्त इमं राजर्षयो विदुष काले न महता योगो नष्ट परंत समे पे आया अद्यम। मैं पुनः तुझे माध्यम बनाकर ये योग स्थापित करता हूं, यानी कि 5000 साल पहले भगवान तो द्वापरांते आए, यानी कि युग के अंत में आ रहे, तो युग के अंत में जो होने वाला है इनको सब पता है, दूसरे युग जो कलयुग में क्या होगा उसका भी तो पता है। इसीलिए ये योग जो भागवत धर्म कहलाता है उसकी पुष्टि भगवान ने स्वयं करके बताया। इसीलिए भगवत गीता हमारे लिए बहुत प्राथमिक भगवत भक्ति के लिए आवश्यक है, और श्रीमद् भागवत पूर्ण रूप से बारीकाई से अध्ययन करने का है, और जो परिणाम रूप चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी होकर रघुनाथ दास गोस्वामी से कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने दीक्षा ली, रघुनाथ दास गोस्वामी के शिष्य बनकर इनकी आज्ञा से, और ज्यादातर स्वरूप दामोदर की डायरी में से सारे प्रसंग उद्धृत करके कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने ये चैतन्य चरितामृत लिखा है। पहले ही प्रभुपाद समझाते हैं चैतन्य यानी कि लिविंग फोर्स, यानी कि जो जीवंत चीज क्या है, जीव क्या है और निर्जीव क्या है। तो चैतन्य यानी कि जीवंत रखने का जो जो जीव शक्ति है, चरित्र उसका चरित्र, और अमृत अवस्था में कैसा होता है यानी कि सनातन अवस्था में। इतनी सारी स्पष्टता करने के बावजूद भी हम यदि सिर्फ धार्मिकता से ही पढ़ते रहे उसके लिए कोई उपाय ना कर तो फायदा क्या रहे। कौन सा ऐसा हमारे मन में शंका का निवारण करने के लिए इस श्लोक में जो हमने सारा पढ़ा उसमें प्रभुपाद ने कोई भी कोना बाकी नहीं रखा है जहां सफाई नहीं की हो। नहीं तो भागवत धर्म को सर्वप्रथम श्लोक में तो वेदांत सूत्र बताया, वेदांत सूत्र की भाषा के, और सारा वेदांत सूत्र को समझाने के लिए ये दूसरा श्लोक धर्मो प्रोजित कई तो वत्र परमो निर्मल, यानी कि कम से कम ये धर्म का आचरण करने के लिए जो लायकात होनी चाहिए तो परमो निर्मत सराणाम सताम को लागू होती है। यानी कि भागवत जो सुनने वाला है, जो चर्चा करने वाला है, हाँ इसका फैलावा करने वाला है, वो भागवत धर्म के लिए परमो निर्मत शरणम होना बहुत आवश्यक है। तभी तो सबका ध्येय लक्ष्य एक है, जो भगवत प्राप्ति है। भगवान के यहां इतनी भीड़ नहीं हो जाएगी, भगवान तो बहुत विशाल, इनकी सारी स्थिति ये भौतिक स्थिति से तो 3 गुना ज्यादा है, तो फिक्र करने की तो कोई बात नहीं। वहां कौन पोषण करेगा, कौन रक्षा करेगा, वो चिंता तो यहां के एक पाद भूमि में ही है। लेकिन हमें ये निश्चयात्मक भाव से भागवत धर्म हमेशा करना। उसकी शुरुआत कहां से होती है भागवत धर्म की? पांच श्लोक दिए गए हैं पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में। शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण, क्यों वहां से क्यों चालू किया? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी, सुत गोस्वामी, सारे मुनिया जो शुद्ध सत्व की स्थिति के लिए विचार करते हैं, अपना भागवत सुनने का महत्व वो स्थापित करके ही बैठे हैं। अन्य चीजों में या अंदर अंदर बातचीत भी नहीं करते कोई, एक ध्यान से श्रवण करने के लिए योग्य व्यक्ति के द्वारा सुनना चाहते हैं। सुत गोस्वामी के पिता रोमहर्षण पहले था, वो पुरानी है, और बलराम आए, इनको हटा दिया, जा तेरे बेटे को बैठा, वो लायक है। इसका मतलब क्या है? जो प्रतिष्ठा, लाभ, और तीसरा क्या है, पांडित्य, तीनों के लिए जो कोई भागवत करता करता है तो फिर कोई फायदा नहीं। सुत गोस्वामी ने श्रीमद भागवत सुखदेव गोस्वामी से सुनी थी, तो हेतु की सुरक्षा भागवतकार को हमेशा सिरोधार्य होनी चाहिए। तो ये श्लोक की महत्ता हमें परिणाम रूप चैतन्य चरितार्थ भी बहुत आवश्यक बताई है, और पहली आदि लीला के प्रथम अध्याय में ही। तो ये श्लोक काफी गंभीर है, उसका अभ्यास करना चाहिए। किसी भी प्रकार का धार्मिकता की प्रवृत्तियां चाहे कितनी उद्दात हो, जो धर्म को फैलावे करने के लिए ख्रिस्ती लोग दुनिया भर में घूमते फिरते हैं, दावा करते हैं कि पहले सदी में हमने साउथ अमेरिका और अमेरिका में फैलाया, दूसरी सदी में हमने अफ्रीका और यूरोप में फैलाया, अभी तीसरी सदी में हम साउथ ईस्ट एशिया में हम जो बोया है बीज उसका लाभ उठाएंगे। ये पोप पॉल छठा 2001 में दिल्ली आकर बोला है, उस समय देखो जनवरी में साल की शुरुआत में। ये धर्म का फैलावा करने में तो मुसलमान लोग भी कितने विचित्र उपाय भी अपनाते हैं, जबरदस्ती एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में तलवार, बोल क्या चाहिए है? इंडिया के सारे मुसलमान हिंदू थे, अब बंडा फूट गया ना लोग कहा, वहां भी बोलते नहीं ना भी बोलते नहीं, स्वीकार लिया। तो कहने का मतलब है हमें इस श्लोक को बहुत गौर से ध्यान से हमें पढ़ना चाहिए। कितनी कितने ढंग से बताया गया है, जितनी बार पढ़ो उतनी बार आपको अत्यधिक उसका प्रमाण मिलता जाएगा। अर्जुन की स्थिति का वर्णन है भगवद गीता में, क्योंकि प्रभुपाद स्थापित करना चाहते हैं कि यहां जो श्लोक बोला गया है वो भगवद गीता के आधार पर ही है, क्योंकि भगवान दुबुहिया बातें नहीं करते हैं। अर्जुन समझता था कि भगवान ने दूसरे अध्याय में कितने योग बता दिए, भक्ति योग में भी बात, बुद्धि योग के बारे में भी बात कर दी, ध्यान योग के बारे में भी बात कर दी, वो थोड़ा, लेकिन प्रश्न पूछता है। भगवान आप मेरे मन में द्विधा उत्पन्न कर रहे हैं, एक तरफ कहते हैं कि ये योग करो, ये दूसरा योग, ये तीसरा योग, क्या करो? यदि आप कर्म योग को सही मानते हैं तो आप किम कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशव, ये घोर कर्म में मुझे क्यों उतारते हो? यदि ऐसे कर्म करने से मुक्ति तो सही लेकिन भगवत प्राप्ति भी हो सकती है, लेकिन वो कर्म की संज्ञा अकर्म के रूप में उसकी खोपड़ी में नहीं गई थी। कर्म विविध प्रकार के होते हैं, इनके फल भी विविध प्रकार के होते हैं। इसीलिए अर्जुन का उदाहरण देकर बात करते हैं श्रील प्रभुपाद जी, तब खोपड़ी ठिकाने नष्टो मोहो स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादा मया च्युत गत संदेह स्थितोऽस्मि करिष्ये वचनं तव। ये इतना बड़ा धार्मिक है, भगवान का फ्रेंड है, कहां गलती हो गई उसकी? बहुत सारा धार्मिकता, युधिष्ठिर पांचे पांडव अपने बड़े भाई युधिष्ठिर से आज्ञा प्राप्त करके ही कर्म करते थे, वो तो धर्मराज का बेटा था, तो क्या उसे धर्म मालूम नहीं था? फिर भी वो जानते थे आप संदेह क्यों करते हैं, क्योंकि हर एक कार्य में भगवान की इच्छा होती है, इसीलिए भगवान के निमित्त बनकर काम करना है। जुआ खेलना आता नहीं था, फिर भी कह दिया दुर्योधन के कि हाँ हम खेलेंगे। तब अर्जुन और भीम लड़ने के लिए आ गए दोनों युधिष्ठिर से, ए भैया तुम तो जानते नहीं जुआ खेलना है, पैसे कैसे हाँ बोल दी? यानी कि निश्चय रूप से ये लोग के ये तरकीब है हमें फंसाने की और परेशान करने की। काफी परेशानी तो हो गई, आप ज्यादा और परेशानी क्यों मांगते हैं? तो युधिष्ठिर ने कहा, क्या तुम भूल गए कि तुम्हारा और हमारा सबका जन्म दैवी हुआ है और भगवान के निमित्त बनने के लिए हुआ है, भगवान तुम्हारे पक्ष में है, तो कोई भी संजोग कैसा भी क्यों ना आए, कोई भी चुनौती कैसे क्यों ना आए, हमें बिल्कुल भय बिना स्वीकारनी चाहिए। युधिष्ठिर को भगवद गीता कहने की भगवान को आवश्यकता नहीं रही, फिर भी युधिष्ठिर को नारद मुनि आदर्श समाज की व्यवस्था बताते हैं, आदर्श चार वर्णों की व्यवस्था बताते हैं, और किस तरह दैवी वर्णाश्रम धर्म स्थापित किया जाता है, वो 70वें अध्याय के चालू करो, सारा 70वें अध्याय सात नहीं 12, 13, 14, 15, 17 तक, सातवें स्कंद में दिया है। नारद मुनि युधिष्ठिर को सिखाते हैं, क्या युधिष्ठिर को सीखने की आवश्यकता थी, फिर भी निमित्त बनकर हमारे लाभ के लिए ही तो सुनाया ने, क्योंकि ये स्वधर्म का पालन है। भगवान की प्रीति लक्षणा भक्ति करना ही एकमात्र स्वधर्म का पालन बताया है। इसलिए कोई भी धर्म भक्ति से बरोबरी नहीं कर सकता, न तो उसे ऊपर हो सकता है। कहीं कहीं है तो शायद समाज में फायदा कराने के लिए भी आते हैं। यहां भी आप देखोगे कि केशव जी मार्ग है, 1996 की बात है, वो 4 एकड़ की भूमि 1-1 लाख पर एकड़ मांगते थे उस समय, 1 एकड़ के 10 लाख, तो 40 लाख का ऑफर आया था हमारे पास। मैंने बोला हमारे तो बस की बात नहीं है, पर ये भूमि आरएसएस वालों ने ले ली। उन्होंने सोचा कि धर्म का स्थान है, बाहर के लोग भी काफी आते हैं, तो हमें अब अपने ढंग से सुरक्षा का प्रावधान करना चाहिए। तो उस समय कभी कभी वो लोग वैसे हाथ में डंडी लेकर आते थे सर्दी के समय में, लेकिन किसी के हाथ में माला नहीं थी, किसी के हाथ में माला नहीं थी। रेस्टोरेंट चालू था, तो हमने बोला कि चलो आप आओ प्रसाद पाओ, ठीक। थोड़ी चर्चा हुई तो वो राष्ट्र धर्म को सबसे ऊंचा धर्म मानते हैं, राष्ट्र धर्म। यस्यात्म बुद्धि कुनपे त्रिधातु के स्वधि कलत्रादिषु इज्ज भौमधि यत्तीर्थ बुद्धि सलीलेन करहिचित जनेषु अभिकेषु स एव गोकर। अब भागवत तो किसी को छोड़ता नहीं। हाँ, तो धर्म क्या है उसकी सचोट व्याख्या यदि आपको चाहिए तो यही पन्नों पर आपको मिलेगी। इसीलिए ये बारंबार इस पर क्लास देने की आवश्यकता होती है। कल आपने आता सुना मुझे बता के महाराज जी आप आधे से चालू करो, मैंने बोला आधे से की क्या बात है, मैं तो अगले श्लोक से चालू करूंगा। तो कभी कभी हमें भी जुस्सा आ जाता है, क्यों फटकार करने में तो थोड़ा शक्ति तो बतानी चाहिए ना। चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों द्वारा जो जो लिखा गया है, चैतन्य रसंगी संगे नित्य सिद्ध माने, नित्य सिद्ध करी माने जे जाए ब्रजेंद्र सुत पास, ऐसा तगड़ा कन्फर्मेटिव पूर्णतया निश्चित किसी ने गम्य स्थान भी नहीं बताया है, और कैसे जाना है कहाँ जाना है कोई भी विचार नहीं है। सब बाकी के धर्म वाले जो कैतव धर्मी हैं, चाहे वो धर्म अर्थ काम मोक्ष को ही अपना फर्ज मानते हैं, उसको भी यदि गंतव्य स्थान मुक्ति के बाद क्या है वो पता नहीं है। मोक्ष धर्म कोई अंतिम धर्म नहीं है, क्योंकि जीव सनातन है, कभी बंधा है कभी छूटा है। तो मोक्ष धर्म छूटने के लिए है, उसके बाद क्या है? इन लोगों के पास है, भागवत के पास जवाब है। तो आप किसी को कोई प्रश्न है तो अवश्य करिए। भाई माइक दे दे वहां जल्दी। तो हम प्रसाद की तैयारी करते हैं जल्दी फटाफट, नहीं तो आप लोगों को भूख लगी होगी।
हरे कृष्ण महाराज, प्रणाम महाराज। मेरा प्रश्न ये है, जैसे कि भगवद गीता में भगवान बोलते हैं कि गायों की रक्षा करने के लिए और ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए मैं सदा आता हूँ, तो लेकिन जिस तरीके से आज आप देखते हैं कश्मीर में इतने सारे ब्राह्मणों की वहां पे हत्या कर दी गई, और भी अक्सर ऐसा सुनने में आता है, तो फिर इसको हम कैसे समझ सकते हैं इस चीज को? या फिर ये उनके पास्ट कर्मास थे इसलिए ऐसा हुआ, या फिर कैसे समझे इस चीज को हम?
देखो, आप व्यक्ति हैं, आप अपने उद्धार के लिए ये प्रश्न करते हैं तो वाचा का भी उपयोग करते हैं, लेकिन आप जब मुझे सुनते थे तो आप खोपड़ी में विचार भी तो करते थे ना, हा? तीनों थी तो मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से गायों की सेवा करनी चाहिए। सिर्फ दान देकर वो तो पार्शियल कहलाती है। भगवान के नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय, उन्होंने कैसे करके बताई? ब्राह्मणों की रक्षा स्वयं ने की है। वो तो भगवान है, वो सब कुछ कर सकते हैं, तो भगवान के अंश तुम है तो आंशिक रूप से तो करो, तीनों चीजों अपनाओ। तो इसमें आपके विचार विशुद्ध सत्व में है, श्रीमद् भागवत के अनुसार आपके विचार प्रायोगिक रूप से ये वास्तविक धर्म में और खास करके दैवी वर्णाश्रम धर्म में आएगा। सुचित धर्म है, सुचित कर्म है, वो भागवत में तो उसकी चर्चा हो गई है पहले स्कंद में ही। ये धर्मो प्रोजित कैतव, एक कैतव धर्म छोड़कर जो आत्मा को प्रसन्न करने वाला या आत्मा में परमात्मा बैठे हैं उनको भी प्रसन्न करने वाला कौन सा धर्म हो? तो वो भागवत धर्म, उसकी सराहना कैसे करते हैं? वर्णाश्रम धर्म। अतः पुम भी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग स्वनुतिष्ठ से धर्म से संसिद्धि हरितोषणम, भगवान के संतोष के लिए। क्या थोड़ी विस्तृत व्याख्या है ना भागवत धर्म की? ये भी नहीं आगे तो चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में पढ़िए, रामानंद संवाद में रामानंद राय ने जब ये वर्णाश्रम धर्म की बात की तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? यही तो बाह्य, आंतरिक क्या है? मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, आंतरिक क्या? वो धर्म का भी पालन चैतन्य महाप्रभु को अधूरा लगता है। धीरे धीरे देखो कहां तक पहुंचता है प्रेम लक्षण है भक्ति, वही आत्मा को संतोष देगा और भगवान को संतोष देगा। आपकी आत्मा संतुष्ट है इन इन चीजों में थोड़े थोड़े, इसका मतलब ये नहीं कि के भगवान संतुष्ट है। स्वधर्म का पालन भगवान के निर्देश अनुसार तो होना चाहिए, लेकिन भगवान का निर्देश में भगवान की अंतिम इच्छा क्या है? आप उसका सोचोगे या अपना स्वार्थ का सोचोगे? खुद के लिए ही सोचोगे? अर्जुन क्यों कहता है कि नष्टो मोहम स्मृतिर लब्ध्वा तत्प्रसादाम मयाच्युत गत संदेह स्थितोस्मि करिष्ये वचनम तव। भगवान जैसे कहते हैं वैसे करना। भगवान ने आपके लिए सिर्फ गायों की रक्षा और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए बोला है क्या? यही तो बाह्य आंतरिक भगवान और आप दोनों के अलावा कोई प्रेम संबंध में दखल नहीं कर सकता, वो प्राप्त करने की बात कर रहे हैं।
महाराज एक प्रश्न और है मेरा,
धीरे धीरे आगे बढ़ रही प्रसाद आ रहा, चलो आ जाओ भाई। हरे कृष्ण।
थैंक यू महाराज। हरे कृष्ण। राधे राधे राधे।
ये भी लाओ। हाँ ये भी है माँ प्रसाद, एक में 10 खाएंगे ऐसा लगता है।
Thank you.